शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुवान कृला वृष्ण भक्ति सिद्धान सृष्टि गोस्वामी। शील प्रभुपाद की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार श्री हरिदास ठाकुर की जय। ग्रंथनाथ श्रीमद भागवतम की जय। निदाय गौर हरि ब्रह्मानंदे हरि हरि ओम नाम विष्णु बधाई। तो आज पढ़ेंगे हम लोग भागवत महापुराण से चौथा स्कंद अध्याय 25, राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन, श्लोक संख्या 28 29। अरे मैं 28 पढ़ लिया, रब कर दिया, कोई बात नहीं, चलो सब एक ही है, खिचड़ी कहीं से खाओ। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। न आशा नाशा वरोरु अन्यतमा वरोर्नन्यतमा भुवि स्पृका भुवि स्पृका पुरीम इमाम पुरीम इमाम वीरवरेण साकम अरहसि अलंकृतुम अभ्रद कर्मणा अरहस्य अलंकृतम अभ्रद कर्मणा लोकम परम श्री इव श्री इव जग्यपुंसा नासां वरोरुन्यतमा भविस्त्रिका नासा वरोरुन्यतमा भविस्त्रिका पुरीं इमां वीरवरेण साकम् पुरीं इमां वीरवरेण साकम् अरहस् अलंकृतम् अब्रद कर्मणा अरहस् अलंकृतम् अभद्र कर्मणा लोकम् परम् श्री इव यज्ञ पुंसा लोकम् परम् श्रीरिव यज्ञपुंसा नासां वरोर्वन्यतमा भविस्त्रिका नासां वरोर्वन्यतमा भविस्त्रिका पुरीं इमां वीरवरेण नासाकम् पुरीं इमां वीरवरेण साकम् अरहस्य अलंकृतम् अदब्र कर्मणा लोकम् परम् श्रीरिव यज्ञ पुंसा नासां वरोर्वन्यतमा भविस्त्रिका पुरीं इमां वीरवरेण साकम् अर्हस् अलंकर्तुम् अदब्र कर्मणा लोकम् परम् श्रीरिव यज्ञ पुंसा और कोई प्राणी माता जी लोग नहीं आशा इनके बरोरु हे सुभगे अन्यतमा कोई भी भुवि अस्प्रिका पृथ्वी को छूते हुए पुरीम नगरी इमाम यह वीरवरेण महान वीर साकम सहित अरहसी पात्र हो अलंकर्तुम अलंकृत करने के लिए अद्र यशस्वी कर्मणा कार्यों से लोकम संसार परम दिव्य श्री लक्ष्मी जी इव के सदृश यज्ञपुंसाम समस्त यज्ञों के भोक्ता सहित। अनुवाद और तात्पर्य भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद की जय। जोर से बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे परम सौभाग्यवती, ऐसा लगता है कि मैंने जिन स्त्रियों के नाम गिनाए हैं उनमें से तुम कोई नहीं हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पांव पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं, किंतु यदि तुम इस लोक की कोई सुंदरी हो तो जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु के साथ वैकुंठ लोक की श्री वृद्धि करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ इन नगरी की सुंदरता बढ़ाओ। तुम्हें ज्ञात हो कि मैं महान वीर हूं और इस लोक का अत्यंत पराक्रमी राजा हूं। तात्पर्य, आसुरी तथा भक्तिमयी अभिरुचि में अंतर है। भक्त यह अच्छी तरह जानते हैं कि लक्ष्मी जी विष्णु या नारायण की चीर संगनी हैं और किसी जीव द्वारा भोग्य नहीं है। यह उच्च भावना कृष्ण चेतना भक्ति कहलाती है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति नारायण की समृद्धि का अनुकरण करते हुए सुखी रहना चाहता है। इस श्लोक में पुरंजन उस तरुणी को एक समान स्त्री के रूप में मानता है, किंतु उससे आकृष्ट होने के कारण वह उससे अनुरोध करता है कि वह उसकी संगनी बनकर लक्ष्मी सदृश सुखी बन जाए। इस प्रकार वह अपना परिचय अत्यंत प्रभावशाली राजा के रूप में देता है, जिससे वह स्त्री उसे अपना पति बना सके और लक्ष्मी की भांति सुखी हो सके। श्री भगवान का दास बनकर इस संसार को भोगने की इच्छा देवतुल्य है। श्री भगवान का दास बनकर इस संसार को भोगने की इच्छा देवतुल्य है, किंतु असुर लोग श्री भगवान को माने बिना इस संसार का भोग करना चाहते हैं। एक असुर तथा देवताओं में यही अंतर होता है। इस श्लोक में उल्लेखित भूस्पृकः शब्द महत्वपूर्ण है। जब कभी देवता पृथ्वी पर उतरते हैं तो वे भूमि का स्पर्श नहीं करते। पुरंजन यह जान गया कि यह तरुणी किसी दिव्य लोक अथवा उच्चतर लोकों से संबंधित नहीं है, क्योंकि उसके पैर भूमि का स्पर्श कर रहे थे। चूंकि इस संसार की प्रत्येक युवति चाहती है कि उसका पति प्रभावशाली हो, अतः पुरंजन अपने को ऐसा ही व्यक्ति बताकर उसे ठगना चाहता था। इस भौतिक जगत में चाहे वह नर हो या नारी, प्रत्येक व्यक्ति भोग करना चाहता है। नर सुंदर स्त्री का भोग चाहता है और स्त्री शक्तिशाली ऐश्वर्यवान पुरुष की को भोगना चाहती है। इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं से युक्त प्रत्येक जीव पुरुष या भोक्ता कहलाता है। ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री भोग्या है और पुरुष भोक्ता, किंतु भीतर से प्रत्येक जीव भोक्ता है। इसलिए इस जगत की प्रत्येक वस्तु माया कहलाती है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षोर्जिनिमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतैर्महद्भियैमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूषु पुरुषम् भुक्ते गुणांषोडशषोडशात्मकम् शोलम् कृषिष्टम् भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणवामि हरि प्रिये। भाव राधिका माधुरी अस्वादय सुखकार जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बड़ा ही सुंदर ये उपाख्यान है, पुरंजनु उपाख्यान, जिसका वर्णन महाभागवत नारद जी महाराज प्राचीन बरहिस से कर रहे हैं। इसके पिछले अध्याय में एक महाभागवत भगवान शिव ने इनके पुत्रों का कल्याण किया, अब दूसरे महाभागवत इनका कल्याण करने जा रहे हैं। कितनी कृपा है इन लोगों पर कि ऐसे भक्तों की संगति होती है। जिस प्रकार से पांडवगण कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनके ही वंश में, उनके ही परिवार में भगवत गीता और भागवतम दोनों की उत्पत्ति हुई है। भगवत गीता को साक्षात भगवान ने अर्जुन से कहा और भागवत महापुराण को उनके प्रपौत्र परीक्षित से महाभागवत श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी ने कहा। इतना सौभाग्य है। तो वैसे ही इस सौभाग्य देखने को मिलता है कि प्राचीन बरहिषद का कितना सौभाग्य है कि यहां पर नारद मुनि अपना कृपा करने जा रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। कभी कभी कुछ चीज समझाने के लिए डायरेक्टली यदि कहा जाए तो व्यक्ति डिफेंसिव हो जाता है, वह अपना बुद्धि मन के द्वारा बंद कर लेता है और जब तक से बात बुद्धि तक नहीं पहुंचेगी तब तक से मन उसको समझेगा नहीं। इसीलिए जब कुछ कहा जाए तो मन को शांत कर करके बुद्धि से समझना चाहिए। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जिनका भागवतम में कई एक स्थानों पर वर्णन किया गया है। जैसे जड़भरत जी महाराज रघुगण को भववाटिका का वर्णन किए, उसके द्वारा उनको समझाए, वैसे ही बुझौल बुझा करके भगवान शिव नहीं उन लोगों को जो परिचिताओं का नहीं जो जा रहे थे नारायणेश्वर में तपस्या करने के लिए दक्ष के पुत्रों को, उनको भी बुझौल बुझा करके नारद जी समझा दिए। वैसे ही आगे महाराज पुरुरवा का कथा है, वहां भी एक बकरे और बकरी का कथा बता करके वे अपनी पत्नी को समझाए। वैसे ही हिरण्यकश्यपु अपने मां को और बंधुओं को सुजग राजा का कथा सुना करके बताए। तो ऐसे बहुत सी उपाख्यान हैं जो बतलाए जाते हैं एक वस्तु को समझाने के लिए। तो यहां पर महाराज प्राचीन बरहिसत संसार को इंजॉय करना चाहते थे और धन बिटोरना चाहते थे, क्योंकि बेटे गए थे तपस्या करने के लिए, उन्हें मालूम नहीं था कि भगवान शिव उनको भगत बना दिए हैं। सोचे कि बेटे आएंगे धन तो है ही, थोड़ा और हो जाए तो अच्छा होगा, तो इसलिए ये भी यज्ञ में लगे हुए थे। नारद जी देखे कि भगवान शिव के कृपा से इनके बेटे तो अब भक्त बन गए, लेकिन यदि ये भक्त नहीं बनेंगे तो ये बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे उधर से लाल कपड़ा सफरन पहन करके आएंगे, तिलक कंठी धारण कर करके हरे कृष्णा जपते हुए, और बाप कहेगा मैं तुमको पढ़ने अमेरिका भेजा था, तू कहां बन करके आ गया, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए बाप को भी तैयार करना चाहिए, इसलिए नारद जी अब तैयार कर रहे हैं महाराज प्राचीन बरहिषद को। नारद जी ने जो बात कहा वह उस समझ गए, और नारद जी ने इनडायरेक्टली कह भी दिया कि आप जो यज्ञ कर रहे हैं, जिन पशुओं का बलि चढ़ा रहे हैं, टिट फॉर टैट, ये पशु आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज, आप मरेंगे तो आपको भी ऐसा ही वे अपने नुकीले सिंहों से मार मार करके आपका अतड़ी पतड़ी बाहर निकालेंगे, खूब परेशान करेंगे, दुखी करेंगे। तब वे यहां पर पुरंजन का कथा सुनाना प्रारंभ किए। अब तक से हम लोग कथा सुन चुके हैं कि पुरंजन उस स्थान को प्राप्त कर लिया है, उस निवास स्थान को प्राप्त कर लिया है, उस जगह को प्राप्त कर लिया है जहां पर अच्छा तरह से वो सुखपूर्वक रह सके। वह हिमालय के दक्षिण में वह स्थान प्राप्त किया है जो नौ द्वारों का शहर था, पुरंजन। पुरंजन के दो अर्थ है, पुर मतलब शहर और जन मतलब निवासी, उस शहर का निवासी। और पुरंजन का दूसरा अर्थ है कि उस शहर में जो आनंद भोगता हो, जो रमण करता हो, उसे भी पुरंजन कहते हैं। तो यह रमण करने के लिए, आनंद भोगने के लिए निकला था तो पुर में निवास किया। अब यह पुर का वर्णन किया गया है, उस सिटी का वर्णन किया गया है कि कैसी वो सिटी है, वो शहर है, और इस प्रकार से सिटी को देख रहा था पुरंजन। घूमते घामते उस बगीचे में पहुंचा, तालाब के किनारे पहुंचा, जहां पर एक सुंदरी स्त्री से उसका मुलाकात हुआ। प्रभुपाद जी भागवतम के एक तात्पर्य में कहते हैं, अजामिल जब देखा उस वेश्या को, उस निर्लज व्यक्ति से कैसे आलिंगन कर रही थी, कैसे व्यवहार कर रहे थे, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहे कि यह देख करके अजामिल पतित हो गया, वो श्लोक में है। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि अजामिल के पतित होने का कारण वह दृश्य नहीं था। अजामिल ने देखा कि वो स्त्री और पुरुष अभद्र व्यवहार कर रहे हैं तो देखकर पतित नहीं हुआ, बल्कि अजामिल के दिल में वैसी कलुषित भावना थी और वह भावना उसे देखते ही प्रकाशित हो गई। यदि उसके दिल में वो भावना न होती तो वहां पर वो स्त्री पुरुष अभद्र व्यवहार करें, अजामिल पर उसका थोड़ा भी असर नहीं पड़ता। यदि चित्त उसका स्वच्छ होता, साफ होता, तो वह उसे डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन यदि चित्त अशुद्ध है तो वह वस्तु उसको पतित कर सकती है। कोई भी इंद्रियां हो, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, जिह्वा हो, सब इंद्रियां खतरनाक है। जोड़े इंद्रियां ताहे काल, सब खतरनाक है। और हमारे दिल में अनेक प्रकार की, एक नहीं अनेक प्रकार की अशुभ कामनाएं हैं। जब तक से वे अशुभ कामनाएं शुद्ध नहीं होंगी तो इंद्रियां कभी किसी को गिरा सकती है। हम लोग किसी वस्तु की कामना करते हैं और वस्तु का कामना कर करके उसे प्राप्त करने के लिए हम अल्फा में जाते हैं। अब अल्फा में जाते हैं, अल्फा में बहुत वस्तु पड़ा हुआ है, लिपस्टिक से लेकर के क्या क्या नहीं पड़ा हुआ है, सब कुछ दिखाई पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में जाइए, मोबाइल सेक्शन में जाइए, बैग सेक्शन में जाइए, स्त्रियों के सेक्शन में जाइए, पुरुषों के बैग का सेक्शन, कई एक सेक्शन है, है? अब जाइए, वो कोई वस्तुएं आपको आकर्षित नहीं करेगी। कौन वस्तु आपको आकर्षित करेगी? जिसकी कामना है। बल्कि नहीं दिखाई पड़ता, पूछते भी हैं कि भाई ये मोबाइल आजकल नया वाला आया है, कहां मिलता है, पूछते हैं, क्योंकि कामना उसकी है, अन्य वस्तुओं की नहीं है। जब तक से दिल साफ न हो, जब तक से संत न बन जाए, कामनाएं रहेगी, तब तक से कोई इंद्रियां हमें पतित कर सकती है। इसलिए इस कामनाओं को शुद्ध करना चाहिए, इन कामनाओं को शुद्ध करना चाहिए। और कामनाओं को शुद्ध करने के लिए महतपाद रजोब से कम, महात्माओं के चरण कमलों का धूलि ग्रहण करना चाहिए, भक्तों की संगति करनी चाहिए, और संगति से ये कामनाएं नष्ट हो जाएगी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवत का संग करने से, भक्तों का संग करने से ये कामना शुद्ध हो जाएगी। उसी प्रकार से पुरंजन में कामना थी भोग भोगने के लिए। जब कामना हो जाती है भजन के अलावा अन्य, तो हम लोग उसका व्यवस्था करते हैं। जायतो विषयान पुनुषा संगो संग जायते, संगासन जायते कामात, कामात क्रोध जायते, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति भ्रम, अस्मृति भ्रम बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। संग से व्यक्ति का विनाश होता है, संग से। तो ये जो कामनाएं हैं, जब तक ते रहेगी तब तक से व्यक्ति का विनाश होता रहेगा। अजामिल निकला था सुख भोगने के लिए, संसार को भोगने के लिए, इंजॉय करने के लिए। तो इंजॉय करने के लिए घर द्वार चाहिए, बिना घर कैसे इंजॉय कर सकते हैं? घर चाहिए रहने के लिए, तो उसे घर मिल गया। अब जब घर मिल जाता है तो घरवारिन चाहिए, घर को संभालने वाला। अब उसे घरवारिन की इच्छा हुई, इसलिए ब्रह्मचारी लोग घर का इच्छा नहीं करते हैं, वैरागी सन्यासी लोग घर का इच्छा नहीं करते हैं। घर की इच्छा करने से झगड़ा क्या नहीं हो जाता है। एक फेमस कोट है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का, जब बाग बाजार गौड़ीय मठ बनाया गया तो जितने सन्यासी लोग थे अपना अपना रूम ढूंढने लगे कि मेरे लिए होगा, मेरे लिए होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जब सुने तो उन्हें बड़ी ग्लानी हुई कि मैंने बड़ा गलती कर दिया है मंदिर बना करके, बल्कि नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो मंदिर बनते ही ये वासना शुरू हो गई कि मुझे ये ऑफिस चाहिए, मुझे ये रूम चाहिए, बात होने लगी। कहा कि सेल दिस मार्बल प्रिंट बुक्स, पुस्तक वितरण करो, घर बनाने के चक्कर में मत पड़ो, पुस्तक वितरण करो। तो जिसको कामनाओं को शुद्ध करना है, जिसको, जो व्यक्ति अपने लिए यहां घर नहीं बनाता है और भगवान के घर में रहता है, तो भगवान उसके लिए ऊपर घर बना करके रखते हैं। याद रखो। और जो अपने लिए यहां घर बनाने का चिंता करने लगता है तो भगवान कहते रहो कुत्ता बनकर कॉकरोच बनकर के यहीं पर रहो, कहां जाओगे? इतना परिश्रम करके घर बनाए हो, कहां जाओगे? इसीलिए सठ गोस्वामी गण वृंदावन के वे लोग घर अपना नहीं बनाते थे। एक एक वृक्ष तले एक रात्रि शयन, एक वृक्ष के नीचे एक रात होते थे और दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरे रात। अपना डेरा नहीं डाल लेते थे एक जगह पर। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हम किस गली के कुत्ते हैं, हम लोग कहां पर हैं, कहां गोस्वामी गण। हमें वहां पहुंचना है, हमें वहां पहुंचना है, नहीं तो घर बनाएंगे तो घरवारिन की जरूरत जरूर पड़ेगी, चाहे सन्यासी हो चाहे ब्रह्मचारी हो। अजामिल को नौ द्वार की पुरी की प्राप्ति हो गई थी, घर बना लिया था, घर हो गया था रहने चोक। उसके साज बाज, घर मतलब घर की सजावट भी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर लोग बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाने में जितना समय लगता है उसे कहीं ज्यादा समय लगता है इंटीरियर डेकोरेशन कराने में, है कि नहीं? स्ट्रक्चर को भी तोड़ देते हैं इंटीरियर कराने के लिए, कितने बार मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इंटीरियर बहुत जरूरी है। तो पुरंजन इंटीरियर भी पूरा देख लिया, सब फर्स्ट क्लास का था, लेकिन अब घरवारिन चाहिए थी, तो सौभाग्यवश वो भी मिल गई। और ऐसी घरवारिन मिली, ऐसी घरवारिन मिली कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल्पना की घरवारिन थी, असली नहीं थी। घरवारिन समझते हैं ना, घर वाली। तो अजामिल घर, सॉरी क्यों अजामिल आ रहा है, पुरंजन घर वाली को खोज रहा था। और घर वाली का वर्णन अब तक से आप लोग सुन चुके हैं। जब व्यक्ति कामातुर हो जाता है तो गधी और कुत्ती को भी कहता है कि बहुत सुंदर है। कामातुर हो जाता है तो कामांध हो जाता है। तो पुरंजर कामांध हो गया था। श्याम बिहारी हो गया तुम्हारा? तो इस प्रकार से पुरंजन आप लोगों ने सुना कैसे वर्णन किया है उस देवी का। कल के श्लोकों में हम लोगों ने सुना कि पुरंजन उस देवी का उपमा क्या दे रहा है। चार लोगों से उपमा दिया है। ह्री मतलब लज्जा, धर्म की पत्नी है लज्जा। तो कहा क्या आप ह्री हैं, तुम ह्री, क्या आप ह्री हैं, क्या आप धर्म की पत्नी हैं? लज्जा धर्म की पत्नी है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों में लज्जा होना चाहिए। ये आभूषण है। स्त्रियां धर्म, आजकल तो धर्म बहुत खत्म हो चुका है प्राय, धर्म के अनुसार स्त्रियां अनजान व्यक्ति से बात भी नहीं करती है, उसके तरफ देखती भी नहीं है। ये धर्म है। क्यों? लज्जा के चलते। वैसे ही पुरुष स्त्रियों के चरणों का ही केवल दर्शन करते हैं, प्राय जिसको जानते नहीं है देखते भी नहीं है, और जिसको जानते हैं तो उनके चरणों को ही देखते हैं। ये है पुरुषों का लज्जा। और ये दोनों धर्म की पत्नी है। तुम ह्री के आप धर्म की पत्नी लज्जा हैं, भवानी या भगवान शिव की पत्नी सती या पार्वती हैं, अथ वाक, और क्या ब्रह्मा की पत्नी आप सरस्वती हैं? रमा, और क्या आप विष्णु की प्रति पत्नी रमा हैं, यानी लक्ष्मी जी हैं? लेकिन ये स्त्री बोल नहीं रही है, ये बड़बड़ा रहा है पुरंजन, लेकिन स्त्री बोल नहीं रही है। जब देखा कि स्त्री बोल नहीं रही है, इसमें लज्जा है और मैं निर्लज हो गया हूं, तो अपना अब एक कहना शुरू किया। कहता है कि आप मुनि के समान हैं। मुनि लोग मननशील होते हैं, उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता है। कह रहा है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रही हैं, तो लगता है आप मुनि के समान हैं। आप एकांत वन में विचरण कर रही है, लगता है आप सती साध्वी अपने पति को खोज रही हैं। सती साध्वी जो होती है अपने पति के अलावा अन्य किसी को नहीं खोजती है, उसका जीवन केवल अपने पति के लिए ही होता है, उसका श्रृंगार, उसका चाल चलन, सब कुछ उसके पति के लिए होता है। तो इस प्रकार से कहते हुए फिर भी नहीं बोल रही हो स्त्री, हालांकि उसके भी मन में है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही है। त्रिया चरित्र दैवो न जाने, ये फंसाने का तरीका कैसा है देख लीजिए। ये पुरंजनी फंसा रही है पुरंजन को बिना बोले ही है? कुछ लोग बोल कर फंसाते हैं, ये बिना बोले फंसा रही है। अब नहीं बोल रही है तो इनकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है बात करने के लिए है? वो फंसा रही है। फंसाने के अलग अलग तरीके होते हैं, नहीं बोलकर फंसाना, मुस्काना और हंसना तो गया, कहते हैं जो हंसा वो फंसा है? तो कई एक तरीके होते हैं फंसाने का। अब यहां पर सब याद रखना ब्रह्मचारी लोग, ऐसा नो तो तरीका है फंसने और फंसाने का। तो फंसे अब अजान पुरंजन ऑलमोस्ट फंस चुका था, नहीं बोल रही थी। अब बोलवाने के लिए उनके सौंदर्य को देख करके श्री रमा, पार्वती और सरस्वती, इन तीनों में से स्वाभाविक हैं कि लक्ष्मी जी सर्वश्रेष्ठ है। उनके सामने आप लोग मत कहना, लेकिन हैं लक्ष्मी जी अति सुंदर हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी। कई एक कथाएं हैं लक्ष्मी जी के सौंदर्य का वर्णन कई एक ग्रंथों में किया गया है। तो इन्हरी सरस्वती और पार्वती जी में लक्ष्मी जी बड़ी सुंदर हैं। अब सोच भी रहा था, पहचानने का प्रयास कर रहा था कि सरस्वती यदि तो वीणा ली होती जरूर, पार्वती जी होती तो बिना बोले रहती नहीं। मैं इतना बोला हूं तो मुझे श्राप जरूर दे जाती अब तक से, कुछ ना कुछ जरूर पार्वती जी बोलती। आप लोग चित्रकेतु कथा जानते हैं ना, भगवान शिव चुपचाप थे लेकिन पार्वती जी दे डाला श्राप। तो समझ गया कि ये पार्वती जी भी नहीं है। तब कंक्लूजन पर आया कि हो ना हो ये रमा ही हैं, ये लक्ष्मी जी हैं। लेकिन फिर उसे डाउट हो गया कि लक्ष्मी जी यदि होती तो उनके हाथ में कमल हमेशा रहता है जो पुरुषों को विवेक देता है। आज ये कमल लाना भी भूल गई है, इनके हाथ में कमल भी नहीं है। तो पूछ बैठा कि आप आज कमल कहां भूल गई हैं, कमल लेकर क्यों नहीं आई हैं। तब तक से ऊपर से देखते आ रहा था, लगता है ऊपर से हाथ तक आ गया था, कमल देखा नहीं था क्योंकि सुंदर थी। तो अब हाथ तक आया था और कमल इतना तक रहता है, घुटने तक रहता है इतना तक, तो कमल नहीं था। तो मानो अब बिल्कुल नीचे आ गया उनके चरण कमल का दर्शन करने के लिए। जब चरण कमल का दर्शन किया तो देखा कि इसका जो पैर है वह पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, सटा हुआ है। तब उसको क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया तब बोल रहा है, न आसाम बरोर्य अन्यतमा भुविस्पृह। कहते हैं बरोरू हे सुभगे। अब इसके दिल में कामना हो गई इसको अपनाने के लिए, इसे कहते हैं बरो रू बर करने योग्य, हे मेरे बर करने योग्य, यानी तुम्हारा मैं बर बनने के लिए तैयार हूं, इसलिए बरोरू शब्द यहां पर आया हुआ है। सुभगे, हे सौभाग्यवती, तुम्हारा सौभाग्य जग गया है क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूं। कहता है बरोरू न एसाम, इन लोगों का जिनका नाम वर्णन किया उनमें से तुम लगती नहीं हो, उनमें से तुम कोई नहीं हो। तो मानो इनडायरेक्टली वो कह रही हो कि आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं, मैं स्वर्ग की देवी हो सकती हूं यदि वो नहीं हो। तो कहते हैं न अन्यतमा, न तुम देवी भी नहीं हो सकती, अप्सरा भी नहीं हो सकती हो, चाहे इंद्र की पत्नी हुई, चाहे उर्वशी, रंभा, मेनका, ये भी नहीं आप हो सकती हो। तो मानो देवी कह रही है कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ में, उसका हिंदी क्या कॉन्फिडेंस का, हाँ कभी कभी, इतने विश्वास के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि मैं हरी, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी या देवलोक की कन्या नहीं हूं, आप कैसे कह सकते हैं। तो कहते हैं भूवि स्प्रिय, मैं देख रहा हूं का जो पैर है को स्पर्श कर रहा है, जो देवता होते हैं भूलोक से ऊपर जो वाले हैं भूलोक वाले, उनके पैर भू पर स्पर्श नहीं करते हैं, वो ऊपर वाले हैं तो ऊपर ही रहते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। यदि स्पर्श करेंगे तो कोई श्राप होगा, तब जैसे गंगा जी स्पर्श की श्राप बस, उर्वशी भी आई थी महाराज प्रभाव पत्नी में श्राप बस, जब श्राप होगा तब, नहीं तो, क्योंकि वे लोग धर्म के प्रवर्तक होते, धर्म का पालन करते हैं। कभी कभी दिखाई पड़ता है कि इंद्र भी अधर्म करता है तो अधर्म करता श्राप हो जाता, फिर यहां आ जाता है, जो भी वहां अधर्म करता है उसे यहां आना पड़ेगा, वहां केवल धर्म ही है। जैसे महाराज युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे, इसलिए उनका जो रथ था वो कभी भी पृथ्वी को स्पर्श नहीं करता था, पृथ्वी से ऊपर चलता था। तो ये प्रमाण दे दिया पुरंजन कि तुम्हारा पैर स्पर्श कर रहा है, इसलिए तुम इस लोक की ही हो सकती हो। अब एक कॉन्फिडेंस हो गया इसको, पहले थोड़ा डर करके बात कर रहा था कि यदि इंगेज होंगी किसी के होंगी तो मैं कहां से प्राप्त कर लूंगा, यदि रामा होंगी तो विष्णु की हैं, यदि मैं प्राप्त करना चाहूंगा तो ही मेरा विनाश होगा, और यदि पार्वती होगी तो पहुंचूंगा उनके सामने तो श्राप दे देंगी। तो थोड़ा डर रहा था, लेकिन अब उसे कॉन्फिडेंस हो गया कि ये संसार की ही है, यही की है। अब अपने मुंह से अपना बड़ाई करने लगा। देखिए पहले के जमाने में और आज के जमाने में क्या है अंतर, स्त्री फंसाने का तरीका देखिए, सीखना मत इस बात से है, कल कहा जाता है यहां पर। पहले प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज करके जो लंपट लोग हैं, प्रभुपाद लंपट कहते हैं, जो स्त्रियों को फंसाना चाहते हैं वो वुमन लिबरेशन शुरू कर दिए हैं, वुमन लिबरेशन, स्त्रियों का गुणगान कर करके फंसाते हैं, कितनी सुंदर हो, स्त्रियों का गुणगान करते हैं, और पहले के लोग अपना गुणगान करते थे कि मैं कौन हूं, अपना परिचय देते थे। आप यहां देख सकते हैं कि पुरंजन अपना परिचय दे रहा है, कह रहा कि मैं कौन हूं, कहता कि इस पूर में, इस शहर में, मेरा ही शहर है, उसका है नहीं, तो मेरा ही शहर है, और एक नहीं नौ द्वार का शहर है, शहर का पूरा वर्णन किया, पूरम इमाम, यह जो नगरी है वह मेरा ही है, वीरवरेण साकम, हे बरोरु, मैं वैसा ही वीर हूं जिसको तुम वरण कर सकती हो। स्त्री कैसे पुरुष को चाहती है, जो पुरुष शक्तिशाली हो, वीरजशाली हो। यहां पर अर्हस्य अलंकर्तुम अदभ्रकर्मणा, तीन बात कहा गया है। जिसके पास धन संपत्ति हो, जो यशस्वी हो, जो बलवान हो, स्त्रियां उसे स्वीकार करेगी। आजकल उल्टा हो गया है। मैं उस ब्रह्मचारी का नाम नहीं कहूंगा, लेकिन एक ब्रह्मचारी कहा था, प्रभु जी मैं ऐसे लड़की शादी करना चाहता हूं जिसके बैंक में कुछ पैसा हो, जिसके बैंक में कुछ पैसा हो उससे शादी करना चाहता हूं। पहले के लोग ऐसे नहीं, पहले बैंक बैलेंस वाले लड़की शादी नहीं करना चाहते थे। आप समझ रहे कैसा उल्टा हो गया है। प्रभुपाद जी कहते थे स्त्रियों को खुश करना है तो तीन चीज चाहिए, उसे सुंदर अलंकार दो, पहनने के लिए कपड़ा दो और संतान दो, बस वो खुश रहेंगे। स्त्रियों को और कुछ नहीं चाहिए बस। अब ये तीनों चीज यहां पर एक कह रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ हो जाएगा। अलंकृतम, धन दौलत की कमी नहीं है, पूरा शहर हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ, आप देख रही हैं, अपना ही शहर है, आप इसमें निवास कर सकती हैं। और अर्हस्य, मैं पात्र हूं, मैं सुयोग्य हूं, संतान भी दे सकता हूं। और अदभ्र कर्मणा, अरे मेरे कर्म का जसगान सब लोग करते हैं, मैं ऐसा ऐसा काम किया हूं कि आप सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। तो तीनों बात यहां पर पुरंजन बतला रहा था इसे प्रभावित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। और अंत में कह रहा है कि जिस प्रकार से लोकम परम से इव यज्ञ पुंसाम, जिस प्रकार से यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु लोकम परम, परम लोक में यानी वैकुंठ धाम में, जिस प्रकार से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ में शोभा पाती है, वैसे ही हे देवी इस पुर में आप भी मेरे साथ में शोभा पाएंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य के प्रारंभ में यहां पर पुरंजन को असुर नहीं कहते हैं, पुरंजन को असुर नहीं कह रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बतलाए हैं कि आसुरी तथा भक्तिमयी अभिरुचियों में अंतर है। हालांकि पुरंजन में भक्ति थी लेकिन कृष्ण के प्रति नहीं बल्कि इंजॉयमेंट के प्रति। जो भक्त होते हैं वो इंजॉय करते हैं लेकिन भगवान के साथ में, कृष्ण के साथ में, कृष्ण से अलग होकर के कोई इंजॉय कर ही नहीं सकता है और न तो कहीं इंजॉयमेंट है। यही कृष्ण भजे से ही बड़ चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है वो चतुर होता है। एक बार एक स्त्री थी, अपने घर पर थी, उसकी बहू भी थी घर पर, उसका पति कहीं बाहर गया था। वो घर से थोड़ा बाहर निकली तो देखी कि तीन वृद्ध पुरुष लोग बैठे हुए हैं, भूखे हैं बेचारे, दाढ़ी सफेद हो गई है और उन्हें भोजन की कामना है। तो सती स्त्री थी, इसने कहा कि देखिए अब कलेवर का समय है, भोजन का समय है, आप लोग अतिथि हमारे घर पर आ गए हैं, आप हमारे घर में आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। तो उन तीनों पुरुष ने कहा कि क्या आपके पति घर पर हैं? तो स्त्री ने कहा कि नहीं, मेरे पति घर पर नहीं है। तो इन तीनों ने कहा कि तब हम आपके घर पर नहीं आ सकते हैं, जब आपके घर पर आपके पति नहीं हैं, तो हम आपके घर पर नहीं आ सकते हैं। ये है लज्जा, ये है सभ्यता, ये है संस्कृति। आजकल तो पति घर पर है कि नहीं? नहीं है तो ठीक है, मैं आ रहा हूं। उल्टा हो जाएगा। तो कहा कि जाइए आप, जब आपके पति आएंगे घर पर तब आप बुलाना और हम लोग आएंगे। शाम के समय पति आए तो पत्नी ने सब बात कहा कि क्या क्या हुआ। तो पति ने कहा कि अरे जल्दी जाओ, अतिथि हैं, जल्दी जाओ, बुला कर लो, जल्दी जाओ, बुला कर लो, अतिथि आए हुए कैसे हम लोग खा सकते हैं, बिना खिलाए, अतिथि हैं, बुला कर लो। तो पत्नी बाहर गई और कही कि हमारे पति आप लोगों को बुला रहे हैं, चलिए। तो तीनों ने कहा कि देखो आप किसको चाहते, आप पता लगा कराओ, पति से पूछ कराओ कि हम में से किसको वो चाहते हैं। कहा किसको चाहते हैं आप, तीनों को बुलाए हैं। कह के नहीं देखो हम तीन अलग अलग हैं, ये जो है ये धन का देवता है, ये जो है ये सफलता का देवता है, और ये जो है वो प्यार का देवता है, भक्ति का देवता है, भक्ति को प्रदान करने वाला भगत आदमी है। अब तीनों में से किसको चाहिए। तो स्त्री गई अपने पति से पूछी कि तीन लोग हैं, एक कह रहा है कि मैं वेल्थ हूं, एक कह रहा था मैं सक्सेस हूं, और तीसरा कहता मैं लव हूं, तो तीनों में से किसको चाहिए। तो पति कहता है भाई देखो सुबह शाम परिश्रम करना पड़ता है, जाओ धन के देवता को पहले बुलाओ, धन बाबा को जल्दी बुला करके लाओ। पत्नी बोलती है नहीं नहीं धन नहीं, सफलता को बुलाना चाहिए, सफलता रहेगा धन अपने आप रहेगा, सफलता होना चाहिए, धन दौड़ करके आएगा। तो बहू ये बात सुन रही थी, बहू ने कहा कि देखिए धन आएगा तो लड़ाई होगी, सफलता आएगा तो अभिमान होगा, लेकिन भक्ति आएगा, जब प्रेम आएगा तो आनंद होगा। अब आप समझिए कि आप लोग झगड़ा चाहते हैं कि अभिमान चाहते हैं कि आनंद चाहते हैं। तो पति ने बहू का जब बात सुना कहा, हाँ बहू ने अच्छा बात कहा, कहा तुम जाओ ऐसा करो, जाओ उसको और वहां पर बोलो जो लव है ना, जो भक्ति देवी है भक्ति, उसको बुला कर लाओ, जो आनंद आनंद जो है उसको बुला कर लाओ घर में। तो गया कहा कि भाई आप में से आनंद कौन है, आनंद कौन है। तो आनंद खड़ा हुआ, भाई मैं आनंद हूं। कहा चलिए हमारे पतिदेव आपको बुला रहे हैं। तो जेम खड़ा हुआ आने के लिए तो ये दोनों भी खड़े हो गए, ये दोनों भी खड़े हो गए। तो स्त्री ने कहा अरे आपने तो अभी कहा था कि हम तीनों साथ में नहीं जाएंगे, अभी आप लोग क्यों खड़े हो गए। तो कहा कि देवी तुम चतुर हो, यदि तुम धन को बुलाती तो हम दो नहीं जाते, यदि तुम सफलता को बुलाती तो हम दो नहीं जाते, तुमने प्रेम को बुलाया, तूने आनंद को बुलाया, हम उसके दासी हैं इसलिए हम चल रहे हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति को बुलाता है उसके पास धन होता है और सफलता अपने आप होता है, इसलिए हमें पुरंजन बनने की जरूरत नहीं है, हमें पुरंजन बनने की जरूरत नहीं है। हमें क्या बनने की जरूरत है, भगवान का सेवक। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त यह अच्छी तरह जानते हैं कि लक्ष्मी जी विष्णु या नारायण की चीर संगनी है और किसी जीव द्वारा भोग्य नहीं है, यह उच्च भावना भक्ति कहलाती है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति नारायण की समृद्धि का अनुकरण करते हुए सुखी रहना चाहते हैं, लोग राम राज चाहते हैं राम को नहीं चाहते हैं, यही तकलीफ है। आज प्रायः लोग रावण बन गए हैं। तो जो व्यक्ति सुखी होना चाहता है उसे भक्ति की प्राप्ति करनी चाहिए, अन्य सब अपने आप आ जाएगा। तो पुरंजन यहां पर अपना बड़ाई करते हुए अपना जस जस अपना ऐश्वर्य और अपना वीर्य तीनों का व्रण करते हुए यह बतला रहा है कि तुम मेरे योग्य हो, यानी तुम मुझे वरण कर सकती हो, मैं तैयार हूं। इसीलिए यहां पर बरोरु शब्द यूज किया है, बरोरु, तुम मुझे वरण कर सकती हो, रास्ता खोल दिया, दरवाजा खोल दिया, इसके बाद एक श्लोक में और वर्णन किया उसके संबंध में, और बाद में वो देवी वर्णन करना शुरू की। अब देवी अपना मुंह खोली, जब देखी कि दरवाजा खुल गया तब देवी बोलना शुरू की, और वो भी वैसे ही बोली है जैसे ये बोले हैं। वो भी खूब इनका गुणगान की, कहे कि कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली स्त्री होगी जो आप जैसे पति को स्वीकार नहीं करेगी। तो बरोत्तम शब्द आया हुआ है, बरों में आप उत्तम हैं, यहां पर बरोरु और आगे आया है बरोत्तम, आप बरों में उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं। तो बरों में उत्तम को वो वर्ण करेगी बाद में, लेकिन ये इस श्लोक में इन्होंने वर्ण कर लिया है उसको, अपना स्वर्ज, अपना जस और अपना वीर का वर्णन कर करके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण। सुंदर क्लास। मेरा सवाल है, हम शास्त्रों से जानते हैं, गुरु से मुखारविंद से सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम क्यों वो माया में फंस जाते हैं?
कहते हैं कि शास्त्रों से सुनते हैं, हम समझते हैं, लेकिन माया में क्यों फंस जाते हैं? भगवान बड़ा सुंदर बताते हैं, ज्ञानम विज्ञानम सहितम त्वा मुक्षसी अशुभात। जो अशुभ से, जो पतन से मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, जो पतन नहीं चाहता है, ज्ञानम जो आपने सुना है साधुओं से, गुरु से, शास्त्रों से, विज्ञान उसे प्रैक्टिकल अपनाओ। जो साधु शास्त्र गुरु कहते हैं यदि करेंगे, ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्जात्वा मुक्षसी अशुभात, अशुभ से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी जब ज्ञान को विज्ञान के रूप में प्रणीत करेंगे। उदाहरण के लिए, हम सब लोगों को मालूम है कि 16 माला जप करना चाहिए, हम सब लोगों को मालूम है कि 4 नियम पालन करना चाहिए, हम लोगों को सबको मालूम है कि प्रभुपाद जी का पुस्तक वितरण करना चाहिए, हम सब लोगों को मालूम है कि मंगला आरती इत्यादि में आना चाहिए। आप में से कहा जाए कि चलो हम लोग पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं, देखो पप्पू भाग गया, क्या परम पुरुष उधर चला गया, कहो कि चलो पुस्तक वितरण करने जाना है, बस रेडी है, हमारी नानी मर जाएगी, हम नहीं जाना चाहेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि पुस्तक वितरण करना हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस है, सब काम बंद करो और पुस्तक वितरण करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस। जब ये मंदिर नहीं बन रहा था, परेशानी थी, प्रभुपाद ने क्या कहा? उन्होंने कहा, नहीं कहा कि मैं ब्रह्मचारी आश्रम बनाऊंगा, उन्होंने कहा कि मैं बस अड्डा बनाऊंगा, ये कहा ना, बस अड्डा बनाऊंगा और यहां पर बस आएगी, पुस्तक भरेंगे, वितरण करने जाएंगे। प्रभुपाद जी प्रायोरिटी दिए हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस है, प्रभुपाद जी को प्लीज करता है। प्रभुपाद जी जगे रहते थे, आप लोग प्रभुपाद दिलामित पढ़िए, चाहे किताब है, डिस्ट्रीब्यूट बुक पढ़ो। प्रभुपाद जी सुनते थे, उन्हें आनंद देता था कि आज कितना पुस्तक वितरण किया गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी को आनंद था। तो ज्ञानम विज्ञानम सहितम, प्रभुपाद जी कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस है, और यदि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते हैं तो अपने से नया सेवा खोज लेते हैं, तब गिरेंगे नहीं तो क्या होगा, पति जरूर होंगे। गुरुमुख पद्मवाक्य चितेते करियाख्य आर ना करीबो मने आशा। तो ज्ञानम विज्ञानम सहितम ये बहुत जरूरी है, यदि बचना है तो जो कहा जाता है यथावत फॉलो करो, डोंट लेट योर माइंड स्पेकुलेट ऑन दैट। मन को जगह मत दो कि अपने मन से उठपटांग कुछ और अपना बुद्धि लगा करके अपना अर्थ निकाल, अर्थवाद करना शुरू करे साधु शास्त्र और गुरु के वाक्यों पर, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। डू एज इट इज।
आपने पुरंजन के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन हम बहुत भी सुनते आ रहे हैं शास्त्रों का वर्णन और चाणक्य की भी नीति कुछ पढ़ा है, तो यहां पर आप बता रहे हैं कि पुरंजन कैसे अपनी बड़ाई कर रहा है स्त्री को फंसाने के लिए, तो क्यों पुरुष ही गिरता है जबकि कहते हैं चाणक्य कहते हैं कि 8 गुना ज्यादा स्त्रियों में काम होता है, तो पुरुष ही बार बार क्यों गिरता है, मैं इसके बारे में जानना।
क्योंकि पुरुष मुंह फट होता है और जब स्त्रियां मुंह फट हो जाएगी तो पुरुष गए काम से। मुंह फट मतलब कि बोल देने वाला, स्त्रियां बिना बोले काम कर लेती है, जैसे पुरंजनी कर लिया काम बिना बोले, कितना बोलते रहे कुछ नहीं बोले, चुपचाप रही। लज्जा दोनों में है लेकिन स्त्रियों में लज्जा ज्यादा है, उनका आभूषण है लज्जा। और हां तमाल जी प्रपट दे रहे हैं, क्या बोले हां ये बोलते हैं कि स्त्रियों का वोल्ट पावर ज्यादा है पुरुषों से, 1100 वोल्ट पावर की स्त्रियां हैं और कम वोल्ट पावर के पुरुष हैं, इसलिए आकर्षित होते चले आते हैं। और
आपने कहा जैसे कि घर जो है पूरे जिंदगी भर मेहनत करके जो घर बनाता है बाद में वो खुद को बनकर रहेगा, तो सपोज ये कोई गृहस्थ है और वो धन कमाता है और जब धन कमाने के बाद घर में अच्छा मंदिर भी बनाता है, क्या क्या वो भी बंधन का कारण बनेगा?
यदि वो गृहस्थ है और घर बनाता है, यदि भगवान विष्णु के एंजॉयमेंट के लिए बनाता है तो मंदिर हो गया, लेकिन अपने और अपने बाल बच्चों के लिए बनाता है तो गड़बड़ हो गया। अब अपने लिए बेडरूम बड़ा या बड़ा और भगवान के लिए छोटा, कहता है कि भगवान का मंदिर बनाया, अरे अपने लिए इतना बड़ा बेडरूम और भगवान के लिए छोटा, अपने लिए छोटा बनाओ भगवान के लिए बड़ा बनाओ, है ना, वो ठीक है। और बाद में जब घर बनाओ तो अपने विल में लिख दो कि मेरे मरने के बाद ये घर इस्कान को चला जाना चाहिए, लेकिन बेटों के लिए छोड़ोगे तब वो गड़बड़ है, तब भक्ति का बहाना है, भक्ति नहीं है। पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय और पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, ये कुपुत्र है वो घर छोड़ दो तो आपने तो मंदिर बनाया था लेकिन वो मदिरालय बना देगा, और पुत्र सुपुत्र सुपुत्र है तो आपके वो घर की जरूरत नहीं, अपना अमेरिका में घर बना लेगा, आपके घर से अच्छा बनाएगा। इसीलिए यदि वास्तव में आप समझते हो कृष्ण का है, जानना ज्ञान विज्ञान, केवल लिप सर्विस कर देना कि नहीं ये घर कृष्ण के लिए बना रहा हूं इजी है, लेकिन विज्ञान के साथ में विल में लिख दो कि मेरे मरने के बाद इस काम के पास जाएगा, तब मैं समझूंगा कि हाँ ऐसा ही है। आए लेकिन सत्य यही है ना, सत्य को बोलना चाहिए, भले मैं ना फॉलो करूं लेकिन बोलना चाहिए। एनीवे मेरे पास अपना घर नहीं है, चिंता मत करो। हाँ PL3 देखिए, किसी का अधिकार नहीं रहेगा। अरे वो तो छोड़ो महाराज, अवंती के राजा महाराज इंद्रदुम्न जगन्नाथ जी का मंदिर बनाए, उन्होंने क्या वर मांगा, विल में लिख दिया कि मुझे कोई संतान नहीं होना चाहिए, कल कोटबाजी करेंगे कि हमारे बाप ने मंदिर बनाया, ये भाव होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। हाँ ठीक है, और प्रश्न माता जी लोग गाली ज्यादा नहीं सुना ना, कुछ प्रश्न हो तो कर लो आप लोग। ये दोनों के लिए प्रभुपाद जी कहे हैं तात्पर्य में कि स्त्री और पुरुष दोनों दोनों भ्रम में हैं, दोनों समझते हैं कि मैं एंजॉयर हूं, पुरुष बाहर समझता है स्त्री अंदर सोचती है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि दोनों इंजॉयड हैं, क्योंकि भोक्ता तो कृष्ण है, भोक्ता आरंभ जगत शाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्ता भगवान है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसा कि आपने कहा कि हमको गुरु साधु शास्त्र के वाक्यों पे अपना मेंटल फिक्सेशन नहीं करना चाहिए, रूपा जी बोल रहे हैं बुक डिस्कशन करना चाहिए, तुम्हारा पूरा इंपॉर्टेंस बुक डिस्कशन में होना चाहिए। इसके अलावा यदि रूपा लीला में पढ़ते हैं तो उसमें भी यदि इस मंदिर का देखा जाए तो इस मंदिर के विषय में रूपा जी ने बहुत कुछ कहा, गोविंदा रेस्टोरेंट के विषय में कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए, कई सारी चीजें हैं जो इस मंदिर में उस तरीके का नहीं होता है, तो काफी भक्त लोग या काफी सब डिस्कस होता है, जल्दी जब बुक डिस्कशन में जोड़ दिया जाता है तो और सारी चीजें हैं जो कि ऐसा नहीं होता है कि प्रभुपाद जी की वाक्यों को पालन किया जाता है या प्रभुपाद जी के तरीके से चलता है, तो काफी कुछ डिस्टर्बेंस होता है उसमें भक्त लोग चर्चा।
हाँ, तो यदि आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा ही, आपने स्वयं कहा ना प्रभुपाद जी किए हैं पालन नहीं तो डिस्टर्बेंस होता है, तो आज्ञा पालन नहीं करेंगे डिस्टर्बेंस होगा, आज्ञा पालन करेंगे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जो भी कार्य है वो प्रचार के लिए है, प्रभुपाद ने चार चीज कहा, प्यूरिटी दी फोर्स, बुक्स आर दी बेसिस, यूटिलिटी आवर प्रिंसिपल एंड प्रीचिंग दी सेंस, सब कुछ प्रचार के लिए है। प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो पेड़ के नीचे भी भजन कर सकता हूं लेकिन बड़ा मंदिर बनाया हूं प्रचार के लिए, तब हजार लोग आ रहे हैं, हैं? वैसे ही हम लोगों का ड्रेसिंग भी सेफ्ड हेड तिलक कंठी ये प्रचार के लिए, जो कुछ भी है को कुकिंग करता है वही प्रचार के लिए, प्रीचिंग इज दी एसेंस, और प्रीचिंगों में श्रेयमणि जो है वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब गोपियां हैं कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, लेकिन उन गोपियों में श्रीमती राधिका जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो शिरोमणि हैं। तो ऐसा बात नहीं कि ललिता विशाखा कृष्ण को पसंद नहीं करती है, वो भी पसंद करती है, लेकिन राधा रानी से अलग होकर के नहीं। तो जो भी हमारा कार्यकलाप है उसका केंद्र बिंदु होना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन। व्यास देव आए, पहले श्रुति स्मृति था, उसको पुस्तक के रूप में दिए, वेद को चार भाग में बांटे, भागवतम का रचना किए, किस लिए किए, पुस्तक के रूप में व्यास देव दिए, क्योंकि अल्प आयुष सम्य कलावस्मिन युगे जना मंदास मंद मतयो मंद भाग्य हूं पितृता, श्रुति स्मृति नहीं रह चुकी है, इसलिए पुस्तक वितरण बहुत जरूरी है। व्यास देव फाउंडर आचार्य हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, उन्होंने लिखा और वितरण पर भी जोर दिया, भगवान से प्रार्थना किया कि एक ऐसा पुत्र दो जो वितरण कर सके, वो है सुखदेव गोस्वामी। तो पुस्तक वितरण अनडाउटली मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस है, जो प्रभुपाद जी को प्लीज करना चाहता है उसे एन के न प्रकार हो सके डायरेक्ट पुस्तक वितरण करे अति उत्तम, यदि वो नहीं कर पाते हैं मंदिर में है तो कुछ ना कुछ समय निकालना चाहिए पुस्तक वितरण करने के लिए, ये रिफ्रेशिंग होता है। पता नहीं आजकल क्या होता है, लेकिन पहले जमाने में जब बस पर लोग भक्त जाते थे तो बस से बाहर से आते थे तो सरचार्ज होते थे भक्त लोग, यू कैन फील उनके एक ग्लो निकल रहा था उन भक्तों से। और कोई प्रश्न? आज होली डे है, होली मतलब पवित्र, डे मतलब दिन, कथा कीर्तन सुनने का दिन है, पवित्र दिन है, होली मतलब छुट्टी नहीं। हाँ, और किसका प्रश्न है?
हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, इधर
कहाँ है? अरे मुरारी मुरारी मुरारी, हाँ ये हमारा सम्राट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का।
प्रभु जी आपने बोला कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जोर देना चाहिए, लेकिन
देखो कृष्ण मुरारी प्रभु का व्यास पूजा होगा तो मैं वर्णन कर सकता हूँ उनके विषय में, मनाना चाहिए। वास्तव में ये लोग, ये हुआ पद्मनाभ, बहुत पुस्तक वितरण किए हैं लोग, आई मीन कृष्ण मुरारी प्रभु अपने परिवार को बच्चों को यहाँ छोड़ करके पुस्तक वितरण करने गृहस्थ होकर देखते हैं साक्षात श्यामपुर, अब बेचारा बूढ़ा हो गया, अभी दूसरा अवस्था आ गया, अदरवाइज बोलिए।
लेकिन अभी तो हमें ऐसा लग रहा है क्या हमने गलती कर दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चले गए?
बिल्कुल नहीं, आपने जितना डिस्ट्रीब्यूशन किया वो सब चिट्ठी रहा, और चिट्ठी कहां भेजते हैं? अपने प्रियतम के पास। तो वो चिट्ठी आपने अपने प्रियतम प्रभुपाद और कृष्ण के पास भेजे हैं, वो आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसका चिंता मत करो।
नहीं, लेकिन अभी ऐसा देखते हैं क्या ये भक्त लाइव मेंबर कर रहे हैं या बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, उनकी फैसिलिटी इनकी फैसिलिटी देखे तो बहुत अंतर पड़ता है हमें।
देखिए, लाइफ मेंबरशिप जो है, प्रभुपाद जी एक बार भगवान को लेटर लिखे, भगवान दास को, और प्रभुपाद ने कहा कि देखो तुम लड़के और लड़की जाते हो पुस्तक वितरण करने के लिए रोड पर, हैं? तुमने 20 किताब बेचा, मैं बैठे बैठे यहां पर 10 लाइफ मेंबर बनाया और सबको 10-10 किताब दिया, कितना हो गया? 100 किताब हो गया। तो लाइफ मेंबरशिप का मतलब है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आई मीन आई कैन गिव वन मोर एग्जांपल। ये पांचवा स्कंद भागवतम का नया नया छप कर आया था। प्रभुपाद जी उन दिनों वृंदावन थे, अख्यानंद स्वामी जी प्रेसिडेंट, दोनों ने हमसे कहा था। तो प्रभुपाद जी पांचवें स्कंद को देख रहे थे और रख करके और बाथरूम चले गए। जब आए तो कोई उसको लेकर चला गया था वहां से। तो प्रभुपाद जी अक्षयानंद स्वामी को बुलाए और अक्षयानंद स्वामी को बुलाए, वो प्रेसिडेंट थे, तो अक्षयानंद स्वामी आए वहां पर। तो प्रभुपाद पूछे कि यहां पर मैं पुस्तक रखा था, वो पुस्तक कहां गया? तो अक्षयानंद स्वामी बोले कि प्रभुपाद हमें मालूम नहीं है, मैं तो अपने ऑफिस में था। तो प्रभुपाद ने, तुम तब कैसे प्रेसिडेंट हो, हमारे एक पुस्तक का तुम रक्षा नहीं कर सकते हो? यहां पुस्तक था, व्हाट कैन प्रेसिडेंट यू आर, यू डोंट नो अबाउट दिस बुक। तो अक्षयानंद स्वामी रोने जैसे हो गए, रोने लगे। मैं महाराज का सर्वेंट था तो हमको बता रहे थे इस बात को। तब अक्षयानंद स्वामी ने कहा कि प्रभुपाद जी जब देखे कि मुझे गिल्टी फील हो रही है, तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए और प्रभुपाद जी का मुस्कान भी अरबों रुपया का था, इतना सस्ता नहीं था। तो प्रभुपाद जब मुस्कुराए तो अक्षयानंद स्वामी के देखकर कहे कि देखो तुम लड़के लड़की रोड पर जाकर के पुस्तक वितरण करते हो, मैं बैठा था बैठे बैठे एक पुस्तक वितरण कर दिया, इसका मतलब कि लोग मेरे पुस्तकों को स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद सेड आई एम सिटिंग हियर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक, दिस मीन्स पीपुल दे लाइक माई बुक। प्रभुपाद की वाणी है, पीपुल दे लाइक माई बुक, लोग चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे निर्दयी हो गए हैं कि बाहर नहीं जाना चाहते हैं। वी शुड गेट आउट डिस्ट्रीब्यूट बुक्स एज मेनी बुक्स, नॉट ओनली दिसंबर मैराथन, थ्रू आउट द ईयर। हम लोग कुंभकर्ण बने रहते हैं और जगते हैं दिसंबर मैराथन के समय, ये भी नहीं होना चाहिए। आई रिमेम्बर जब मैं गिरा स्वामी के साथ में जाता था, तो कभी कभी महाराज हम लोग आते थे, ऐसे भी लेट जाते थे, लेट आते थे, और जुहू चौपाटी हम लोग उतर जाते थे, मेरे पास बुक बैग और गिरा स्वामी के हाथ में पुस्तक। अब करीब 7, उन दिनों इतना ट्रैफिक जाम नहीं था, 5 बजे ऑफिस बंद, 6 बजे तक हम पहुंच जाते थे। तो 6 बजे तक लाइफ मेंबरशिप और 6 से 8 2 घंटा जुहू चौपाटी से मंदिर आते आते, 6 बजे लोग मौन इवनिंग वॉक करने आते थे या जुहू चौपाटी पर वो खाने पीने के लिए, तो वहां हम लोग पुस्तक वितरण करते थे। दैट वॉज आवर करकुलम, एटलीस्ट 2 or 3 days इन ए वीक हम लोग करते थे पुस्तक वितरण। मैराथन के समय क्रिसमस रात को, अभी भक्त लोग हरिनाम जाते हैं, उन दिनों रात में भक्त लोग बुक बैग लेकर के जुहू बीच जाते थे पुस्तक वितरण करने के लिए, और अच्छी संख्या में पुस्तक वितरण करते थे। दैट वॉज द लाइफ प्रभुपाद के समय, प्रभुपाद के बाद भी पुस्तक वितरण का लाइफ था। अब पता नहीं हम लोग रागानुगा भक्त हो गए हैं, अब वैदिक भक्त नहीं रह चुकी है, सब नया नया इन्वेंशन हो रहा है। डन फिक्स इफ नॉट ब्रोकन, ये प्रभुपाद जी कहे हैं सबके लिए है, सब समय के लिए है। और कोई प्रश्न? माइक में बोलो, जोर से बोलो।
हम देखते हैं कि प्रोपा जी की बुक्स भी हैं, बट अभी और भी बहुत सारे सन्यासी और भक्तों ने बुक्स लिखी हैं, तो उनका भी मतलब उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या प्रोपा बुक्स को मौरी पढ़ने देना चाहिए हमें?
वेल, एक बार कीर्तनानंद महाराज एक किताब लिखे थे, उसका किताब का नाम था क्राइस्ट एंड कृष्ण एंड क्राइस्ट एंड सॉन्ग ऑफ गॉड, दो पुस्तक था। तो उनसे पूछा गया तो बोले प्रभुपाद जी किताब को लोग समझ नहीं पाते हैं इसलिए मैं ये लिखा हूं। जीबीसी रूल्ड आउट, नो, प्रभुपाद बुक्स आर फॉर 10,000 ईयर्स टू कम, एवरीथिंग इन प्रभुपाद बुक, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद बुक्स, दैट्स इट, मोर देन एनफ। डिसाइपल कैन रीड देयर गुरु बुक, नो प्रॉब्लम, बट अगेन रीडिंग गुरु बुक इज लाइक हियरिंग फ्रॉम गुरु, बट डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी प्रभुपाद बुक्स, दैट कैन, दैट हैज ब्रॉट क्रांति और क्रांति लाएगा भी। प्रभुपाद का पुस्तक जो है पापी दापी जत छिल हर पुस्तक वितरण उद्धारी ल, पुस्तक वितरण कर करके उद्धार किया गया पापियों का। आजकल का जो पुस्तक है हमें नहीं लगता वे लोग उद्धार होएंगे। प्रभुपाद जी का पुस्तक जो है, आई मीन आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इफ यू रीड प्रभुपाद बुक्स इट मीन प्रभुपाद डायरेक्टली टॉकिंग टू यू। प्रभुपाद ने कहा कि मैं लिखा नहीं हूं ये पुस्तक, मैं लिखा नहीं हूं, मैं बोला हूं, मेरा प्रवचन है, इसमें गुरु और कृष्ण दोनों है। प्रभुपाद की पुस्तक में गुरु और कृष्ण दोनों है। तो इफ यू रीडिंग प्रभुपाद बुक्स मीन्स यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रभुपाद। उतना ही नहीं, यू रीड प्रभुपाद प्रॉपर। टुडे यूजुअली आई प्रिपेयर द क्लास, राइट, आई रीड द कमेंट्री ऑफ ऑल 10 गोस्वामीज ऑन दिस वर्स, बट एवरीथिंग इज देयर इन प्रभुपाद प्रॉपर। आई फाउंड एवरीथिंग इज देयर इन प्रभुपाद प्रॉपर। तो प्रभुपाद बना बनाया खाना हमको दिया, खाओ, काहे को चूल्हा जलाने जाओगे अलग से, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद बुक्स एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। एंड इफ एनीबडी इज सेइंग डोंट डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद बुक्स, दिस इज माई बुक, दे आर डीमन। डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद बुक्स, मोर देन एनफ। एज अ डिसाइपल, यस, यू कैन रीड इट, कीप टू योर सेल्फ, बट पब्लिक प्रभुपाद बुक्स मेंट फॉर दैट। मरते दम तक प्रभुपाद जी अंत समय तक डिक्टाफोन पर अनुवाद किए हैं। आप लोग वो वीडियो देखना, प्रभुपाद का लास्ट मोमेंट का वीडियो, 12 नवंबर 1977 का, 14 नवंबर को गए, दो दिन पहले तक अनुवाद कर रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चन? यस, मदर सिद्धि लालसा डन आस इन क्रूअल लैंग्वेज,
Prabhupada also told his disciples,
you got to speak louder.
Srila Prabhupada also told his disciples to write, and
did he tell also to distribute?
He told them to write, and the example is Back to Godhead magazine, when all his disciples were writing under his guidance and they were mass distributed. And the Back to Godhead magazine is actually what made me devotee and so many others.
So Prabhupada has what I can speculate. I don't have any direct answer for that. But Prabhupada has this vision that whole thing should be there to bring everything together, not to be in friction. Not to bring that I want to see my Guru Maharaj book, I want to see my Guru Maharaj book, and where is ISKCON left? BTG was whole ISKCON where everybody can contribute, they can write, you can write, everybody can write, any guru, any disciple can write, and that is for one and all. So if it is like BTG, that's the different thing. Therefore, GBC is very careful, and GBC has made a resolution that BBT will only print Srila Prabhupada's books or the books which Prabhupada could not translate. had to be reviewed by a review board. So any book which is printed by BBT is authorized by GBC. That does not mean, I'm not saying, I just told, you read. But for distribution part, distribute Prabhupada's books. Even the guru who has written, if you ask to them from the core of heart what they feel. If Prabhupada is here today, you know, what will he like? And Prabhupada is here today. He is not gone. We don't think that he dead and gone. He is still there. He'll be happy. If all the book distribution can bring everybody together, I have no problem. I will love that. I will be part of that. But if this book distribution brings friction, then I am not part of that. Prabhupada brought whole world together. He said, I will build a house, the whole world can live peacefully. That's Prabhupada's mood. Bring together, I have no problem. But if bring friction, then the problem. And by reading this book, if you become Bhajanandi, I have my problem. I like to remain Goshtanandi till I die. I am my personal perception. Any other question?